ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم بزرگوں اور بھائیوں اللہ پاک نے اپنے کرم سے ہمیں جمع فرمایا اور دین کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمایا
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ مفتی صاحب mentioned that we thank Allah subhanahu wa ta'ala who's gathered us for this past weekend and allowed us to have concern for the deen.
دین کی فکر سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اندر اور سارے عالم کے اندر لوگ کیسے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے.
What is the fikr of deen? The concern of deen is how all of deen can come into my life and the lives of others so that others also can turn their attention towards Allah subhanahu wa ta'ala.
ہم بھی ہمارے بچے بھی ہماری عورتیں بھی
ourselves, our children and our women.
اس لیے کہ انسانی معاشرہ ان تینوں سے تعبیر ہے.
Because the human civilization is in reality the workings of these three classes of people.
اس میں مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں بچے بھی ہوتے ہیں.
In that you find adults, men and women and children.
تو دین کی جو فکر کرنا ہے وہ ہے کہ ان سب میں دین آ جائے.
So the fikr of deen needs to be that 100% of deen comes into all of these people.
اور سارے مسلمانوں میں آ جائے.
And in all Muslims.
جتنے زیادہ مسلمانوں میں بے دین بے دینی اور دین سے دوری ہے غفلت ہے آخرت سے بالکل غفلت ہے اور اللہ پاک کے احکام سے لاپرواہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دوری ہے یہ احوال بدل کر سب پورے مسلمانوں کی توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہو جائے.
The conditions of the distance from Allah's deen, distance from the sunnah of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, disregard for the sunnah and leading a life of complete ghafla and heedlessness, that these conditions need to change to more favorable conditions. This is the fikr of deen.
اور امت کے دوسرے افراد بھی دین کی فکر میں شامل ہو جائیں.
And then how other members of the ummah can also be connected and involved in this fikr and concern of deen.
یوں سمجھیں آپ کہ ہر مسلمان نمازی ہو جائے اور ہر نمازی داعی ہو جائے.
You may say this in other words, like that every Muslim should become punctual in salah and everyone who's performing salah should become a da'i towards salah.
اس لیے کہ دعوت کے ذریعے سے دین کی محنت وجود میں آ جائے گی.
That it is through the effort of da'wah that the entire deen will come to life.
کیونکہ دین تو اس میں ہوگا یہ کہ جب دین زندگیوں کے اندر آئے گا تو اللہ پاک کی کام نصرت آ جائے گی.
And then when deen will come alive within the lives of the people, then the help of Allah subhanahu wa ta'ala will also be sure to come.
جب اللہ پاک کی مدد آ جائے گی تو دنیا کے حالات مسلمانوں کے صحیح ہو جائیں گے.
And then when Allah's help will come, then the conditions of the Muslim ummah and the conditions of the ummah will change to a better.
اور دین جب زندگیوں میں آئے گا تو آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی مل جائے گی.
And then when deen will come into the lives of the people, then definitely success of the akhirah and success of hereafter will be there as well.
دین دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی کا ضامن ہے.
And that's why deen is responsible for success in this world and in the next.
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے پاس دین آ جائے اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب نہ ہو.
It is not possible that deen comes into a person's life and that he does not attain success in this world and in the next.
اور دین کے بغیر کامیابی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے.
And there is no concept of having success without deen in a person's life.
جو کامیابی نظر آتی ہے دین کے بغیر دنیا کی بھی اگر ہوگی تو وہ دھوکا ہوگی.
Isn't that apparent success that a person may see that people have without having deen, that is just a mere mirage, that even if they seem to have success in this world, that is also a deception.
اس کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں بہت سے واقعات بیان کیے گئے ہیں.
And many stories have been mentioned in the Quran to explain this point.
جیسے اللہ نے فرعون کا قصہ بار بار نقل فرمایا.
Just like Allah سبحانہ وتعالیٰ mentions the story of فرعون many times in the Quran.
کہ دین کے اعتبار سے دنیا کے اعتبار سے ہر طرح کا سامان اس کے پاس تھا.
That in terms of materialistic things he had everything you can imagine.
اس لیے کہ وہ بادشاہ تھا.
Because he was the king of the time.
اس کے پاس محلات تھے.
He had palaces.
اس کے پاس نہریں تھیں.
He had rivers.
تو agriculture کا کوئی مسئلہ نہیں تھا.
So there was no fear of ruining the agriculture.
فوج اس کے پاس تھی.
He had the army.
اور خزانے اس کے پاس تھے.
And he had the treasures.
من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم.
He had gardens, he had springs, he had treasures, and he had beautiful sustenance.
उसने ये भी कहा था कि अलैहि सलीम मुल्कु मिस्र व हाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तहति अफला तुबसिरून.
He also is the one who said, do you not see that the rivers of Egypt are flowing beneath my feet? Do you not see this?
तो इसके इस एतबार से वो अपने को कामयाब तरीन इंसान समझता था.
That's why he used to regard himself as extremely successful.
अल्लाह ने बताया कि ये कामयाब नहीं हुआ.
But Allah Azza wa Jal declared that he is not successful.
इम्तिहान को उसने कामयाबी समझा.
The mere test from Allah, he regarded that as success.
क्योंकि इस दुनिया में इम्तिहान का निजाम कुछ देकर है और कुछ काम लगाकर है.
Allah Azza wa Jal has multiple ways of testing people in this world. Some people he takes something from them, some people he gives them something.
इम्तिहान यहाँ पे यकीन का भी है, इम्तिहान यहाँ पर अमल का भी है.
And the test here is of a person's not only his actions but also of his conviction.
यकीन के इत्तबार से रब किसको माना?
That based on your conviction, where was it your heart turned towards? Who did you regard as your Lord?
ईमानियत पूरे यकीन से ताल्लुक रखते हैं.
ईमानियत all have to do with the conviction.
और अमली जो जिंदगी है इस्लाम की, वो अमली 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 इम्तिहान है.
And then there's another whole aspect is that the actions. How are the person's actions?
कुछ देंगे तो शुक्र का इम्तिहान लेंगे.
Sometimes Allah gives and then He tests the person to see if he does shukr and gratefulness or not.
कुछ नहीं देंगे तो सबर का इम्तिहान लेंगे.
Then Allah sometimes doesn't give something and sees if it's a person patient or not.
और हर बंदे से शुक्र और सबर दोनों की लाइन का इम्तिहान होता है.
And every single one of us gets tested through shukr and sabr.
इसमें ना अमीर की कैद है ना गरीब की कैद है.
There is no differentiation between poor and rich.
न शहरी की है न देहाती की है.
No differentiation between a villager and a city dweller.
इसमें न नेक की कैद है न बद की कैद है.
There is no difference between a righteous one and a sinful one.
बहुत नेक हो जाएगा तो आदमी उसको दुनिया में परेशानी नहीं आएंगी, ऐसी बात नहीं है.
It's not that a person becomes very righteous, he will not be tested in this world.
अगर कुछ भी तकलीफ नहीं आएगी तो इम्तिहान सबर का कैसे होगा?
Then if there is no difficulty that comes his way, how will Allah test him through sabr?
कितना ही परेशान हो नियमतों से खाली नहीं होगा.
And no matter how worried a person may be, there will still always be some type of blessings enjoyed.
अगर नियमतों से इम्तिहान न हो तो शुक्र का इम्तिहान कैसे देगा?
If Allah doesn't give him some type of blessing, how will Allah test him about shukr?
और सबर और शुक्र दोनों ईमान की सिफात हैं.
And sabr and shukr both are the qualities and attributes of iman.
और ईमान की मरकजी सिफात हैं.
And these are the central points of iman.
तो इसलिए इन दोनों का तो इम्तिहान होना ही होना है.
That's why both of these have to be tested for definite.
इसलिए दुनिया के हर इंसान को दोनों तरह के हालात भुगतने होंगे.
That's why every person in this world has
to,
every person in this world has to face both of these conditions related to sabr and shukr.
अब किसके साथ सबर के लिए किस तरह के हालात लाए जाते हैं अल्लाह जानते हैं.
What type of condition will come through sabr, only Allah knows.
और शुक्र के लिए किस तरह के हालात में रखा जाता है अल्लाह जानते हैं.
And what type of conditions will come for shukr, Allah knows.
कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है कि इंसान को जब हम फामल इंसान वैदा मुब्तला हो रब्बुहु फअकरमहु व अनअमहु फयकुल रब्बी अकरमन व अम्मा इदा मुब्तला हो फकदर अलैहि रिज़्क़हु फयकुल रब्बी अहानन कल्ला.
Allah says in the Quran that as for the human being, when Allah tests him and he honors him, gives him blessings, he says, oh, my Lord has been very kind to me. And then when Allah subhanahu wa ta'ala, that same human being puts different conditions on him, tests him by constricting his sustenance, he says, my Lord has disgrace me. And Allah says, nay, this is completely incorrect.
Jo diya ikram ki lens se, inamaton ki lens se, wo bhi imtihan hi hai.
Allah subhanahu wa ta'ala saying, that which I gave you in terms of blessings, that also was imtihan and a test.
Akhirat mein jo ne'matein di jayengi, wo imtihan nahi hoga.
He said, the blessing that you will get and enjoy in hereafter, that's not meant for imtihan.
Wo inam hi inam hoga.
That is only for enjoyment.
और जो तकलीफों के लेंस है इंसान के साथ, चाहे उसकी तकलीफ हो, उसके बच्चों की तकलीफ हो, या उसकी बीवी की तकलीफ हो, या उसके माल के लेंस की तकलीफ हो, या उसकी इज्जत की लेंस की तकलीफ हो, जिस्मानी बीमारी के लेंस से कोई तकलीफ हो, किसी तरह की भी तकलीफ से जब बंदा आजमाया जाएगा तो वो सबर का इम्तिहान है, मुसीबत नहीं हो.
And the believer, no matter what type of situation, whether family is sick, he's sick, child is sick, loss of job, loss of risk, all these type of different conditions that come upon a person, in reality, that is not a calamity, that is a test of Allah subhanahu from Allah subhanahu wa ta'ala to see if he's going to remain patient or not.
मगर फिरौन ने ये समझा कि ईमान जरूरी नहीं है, कामयाबी के लिए ये चीजें काफी.
But Firaun misunderstood this phenomenon. He thought that the mere acquiring of material things and having these rivers and etc. is a sign of success.
Allah ने पानी में डुबो के पकड़ लिया.
And Allah subhanahu wa ta'ala made him drown in the sea and destroyed him.
दुनिया पकड़ लिया.
Allah subhanahu wa ta'ala seized him.
दुनिया समझती है कि फिनिश हो गया.
The people think that he was annihilated and finished.
नहीं, वैसा नहीं हुआ है.
But in reality, that is not correct.
कोई भी इस दुनिया से जाता है तो फिनिश नहीं होता.
No one leaves this world and becomes finished.
चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो.
Whether they're good or bad.
अच्छे अच्छा आदमी अच्छे हालात में रख दिया जाता है, बुरा बुरे हालात में कर दिया जाता है.
Instead, a person leaves this world, a good righteous person is kept in good conditions, and an evil person is kept in difficult conditions.
कितने इस दुनिया से गए हैं, सब इस वक्त बरजख में मौजूद हैं, कोई भी फिनिश नहीं है.
He said, all those who have left us from this world, none of them are finished. All of them are living in the life in the world of Barzakh.
Hazrat Anbiya apni apni khabron mein hayat hain aur apni apni khabron mein namaz padte hain.
The grave and the Prophets Ali Sallallahu Alaihi Wasallam are in their graves alive and performing salat and ibadah in their graves.
Aur unko rizq diya jata hai.
And they are being provided sustenance.
Aur jitne awliya, shuhada, siddiqin, sulaha sab hain, sab apne apne halat ke tabaq se acche halat mein Allah ne rakha
hai. All the righteous people, the martyrs, the pious ones, they are based on their own level. Allah subhanahu wa ta'ala is honoring them in their barzakh.
Aur shuhada ko umuman ye hai ki abhi se jannat mein bhi bhej diya jata hai.
As for shuhada, the martyrs, they've been sent to paradise from now.
Jannat mein direct bhej dena alag hota hai, jannat ke halat mein rakhna alag hota hai.
Going to Jannah directly is different from enjoying the conditions of Jannah outside of Jannah.
Qabar mein aksar log barzakh ki zindagi mein jannat wale halaat mein rakhe jaate hain.
Majority of the righteous people in the grave are enjoying the conditions of paradise in their grave.
Aur jitne faraina, qayasira, bade bade hukmara, zalim aur beiman log jitne guzre hain, wo bhi sab hain.
And all of the firauns of the past and the present, all of the various emperors and rulers, oppressors, tyrants of the past, who have gone away, they are also feeling the heat and the pain of barzakh.
Hai sab bhi to firaun ko bhi khatam nahi kiya, pakad liya.
So they haven't been destroyed and come to an end. Their life is still existing in another world.
Allah pak ne farmaya ke annaru yuraduna alaiha ghuduban wa ashiya.
Allah subhanahu wa ta'ala says fire is presented to them morning and evening.
Rozana do martaba unko saza di jati hai.
Morning and evening, twice a day they are being punished.
Ab andaza ki aur 2500 saal ho gaya usko pakad ke.
It has been over 2,500 years since he was seized.
Aur 2,500 saal mein rozana do martaba.
2,500 years, every single day twice.
Ek sahab se maine pucha kitne hue sab mila ke.
He said, I asked someone, how much is this?
To bole 5,000.
He said 5,000.
2,500 mein rozana agar do martaba usko azab ho raha hai to 5,000 kaisa ho gaya?
He said, how can 2,500 years
times? 2,500 saal.
5,000 times.
To wo to ek din ke 300, ek saal ke 360 din hote hain.
Just 365 days for one year.
To usme
times two.
उस एतबार से आप अंदाजा फरमाइए कि अभी तक इतना वक्त हो गया उसको.
He's already to just now how much punishment he has
gone. और कयामत तक होगा.
Until the day of judgment this will happen.
और कयामत जब होगी तो अल्लाह पाक फरमाएंगे वलमा तकुमु सआ अदखिलु आला फिरौना अशद العذاب.
And then on the day of judgment Allah Subhanahu wa ta'ala will make this proclamation that now take the family and the people of Firaun and Firaun and throw them into the most difficult of punishments.
इससे ज्यादा जिसमें अभी मुब्तला है.
So yani jahannam will be much more difficult than this.
अब वो पीछे नहीं आएंगे.
They're not going to
come back. आगे जाना है.
Their conditions are not going to improve.
और अल्लाह की सजा में आगे जाना है.
And they're going to continue to move forward in the punishment of Allah.
क्या कामयाबी थी भाई?
What type of success is this?
इम्तिहान का नाम कामयाबी नहीं है.
Being tested is not immediately mean that a person is successful.
कारून का वाकया इसी वजह से समझाया गया ईमान वालों को.
And that's why the story of Qarun is mentioned in the Quran.
कितनी दौलत उसके पास
थी. How much wealth he had.
ईमान नहीं था.
But he had no faith.
नाकाम हो गया.
And he became
unsuccessful. पकड़ लिया गया, जमीन में धसा के पकड़ लिया गया.
And he was seized and thrown into the ground.
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो और उसका खजाना कयामत तक जमीन में ही फिरते रहेंगे.
And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said Qarun and his entire treasures will be continuously get sucked up into the ground till the day of judgment.
Aur khali phirte nahi rahenge, saza apni jagah par hoti rahegi.
Keep on getting sucked up into the ground as well as being punished at the same time.
Ab andaza farmaiye ki kitni badi nakami ho gayi.
So imagine what type of massive unsuccess this is.
So deen ke bagair jo kamyabi ka mushahida logon ko is dunyavi lane ka hai wo dhoka hai.
He says, so we need to realize that what we see as a manifestation of success without deen, this is a very big deception.
Quran ne is dhoke ko bahut khol khol ke bayan
kiya. Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran has clearly explained this deception.
Taaki iman walon ko Allah ki baat par yaqeen aa jaye.
So that people of iman can have conviction on the words of Allah.
Aur iman ki haqeeqat ye hai ki mushahide ke khilaf jo khabar hamare paas aa rahi hai us par yaqeen aa jana.
Iman means to believe in the and have conviction in the words of Allah and Rasul even though it may contradict what you see.
Duniya apne taur par kamyab dekh rahi hai lekin hai nahi ye kamyab.
The world may regard someone as successful but that's not the reality of success.
Deen ke bagair kamyabi nahi hai.
Without deen there cannot be any success.
Aur deen ki mehnat ke sath hai.
And deen comes alive with the effort of deen.
Isliye deen ki mehnat apne ghar mein bhi karna hai, apne upar bhi karna hai, ghar mein bhi karna hai aur sare alam mein karna hai.
That's why the effort of deen must be done upon ourselves and upon those who are around us in our family and the entire ummah.
उससे अल्लाह पाक के अज़ाब से उम्मत बच जाएगी.
And through this Allah's अज़ाब the ummah will be protected from Allah's अज़ाब.
और पूरी उम्मत के तवस्सुल से फिर सारी इंसानियत तक ये पैगाम पहुंचना है.
And through the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, through the Muslims, this news has to reach to all parts of the world.
ताकि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत में सब आ जाएं.
So that everyone can enter into the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala.
और अल्लाह पाक के अज़ाब से बच जाएं.
So that everyone can be protected from the punishment of Allah.
इस्लाम दीन रहमत है.
Islam is the deen of rahmah and mercy.
इसको अल्लाह पाक ने दीन इस्लाम को उजात के जरिए से भेजा है जिसको रहमतुल आलमीन बनाया.
Allah subhanahu wa ta'ala sent this deen to us via that being who's known as rahmatul alamin, the source of mercy for the world.
इसलिए इस्लाम के माने सलामती के हैं.
That's why Islam means peace.
और ईमान के माने अमन के हैं.
And iman comes the meaning of security.
So Islam aman ka deen hai.
So that's why Islam is a religion of peace and security.
But nazar farmaye ki insaniyat ke andar agar ye Islam deen aa jayega to sari insaniyat mein aman aa jayega.
So imagine if deen of Islam comes into the hearts and the minds of the entire humanity, you can see what type of peace and comfort the whole humanity will live in.
Isliye mere dosto hum sab isi fikr ke liye aaye.
That is for this fikr and concern we've all gathered here.
Alhamdulillah taala jab se ishtema shuru hua, jab se hamara yahan aana hua, jab se mukhtalif majalis mein hum yahi baat sun rahe hain, yahi fikr kar rahe hain.
He said alhamdulillah since we've come to the ishtema, and in every gathering we're hearing the same thing repeated again and again.
Aur agar sanjeevi se humne is masle par gaur nahi kiya ab farmaye.
He says if we didn't think about it properly before, now listen to it.
तो कैसे कि कैसे दीन हमारे अंदर आ जाए, सारी उम्मत में आ जाए?
Then how can entire deen come into entire ummah?
क्योंकि फिक्र करने के लिए ऐसा नहीं है कि एक मौका था निकल गया तो फिर अब चांस नहीं हमारे लिए फिक्र करने का.
He says it's not that there was an opportunity to fikr, now the opportunity is gone, now we lost this
पूरा मौका है हमारे लिए कि हम फिक्र करें.
But rather we have the entire opportunity, a full opportunity to make fikr.
अब उस फिक्र में मेरे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह जब मेहनत हुई, लोगों की तश्कील हुई, तो अल्लाह का शुक्र से एक अच्छा खासा मजमा ऐसा भी होता है जो अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए तैयार हो जाता है.
So when the effort of deen is made, when fikr is made, when da'wah is made, alhamdulillah, a group of people, they with the fadl of Allah get ready to go out.
एक तबका वो होता है जो नहीं फिलहाल नहीं जा सकता है.
There is a group that is not not able to go out immediately.
उसमें कई फैक्टर होते हैं.
There are many factors that lead to that.
सबसे 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 अहम ये होता है कि मैं जाने के लिए संजीदगी से जैसा गौर करना चाहिए था नहीं कर सका.
The one of the most important aspects of it is that a person says, "I really wasn't able to ponder and properly think the importance of this whole effort."
वरना तो हालात तो जो जाने वाले हैं उनके भी सेम हैं, मेरे भी सेम हैं.
He said, "Those who are going, their conditions, and the ones who are sitting, their conditions are the same." Meaning it's not that some are more free than others.
तो ऐसी सूरत में जब वो जा सकते हैं तो मैं भी जा सकता हूँ.
So that if those who are going are able to go, then I can also go.
तो उसकी वजह से मेरी फिकर में कमी हो गई.
So because I'm not going, then my fikr has decreased.
मेरी हिम्मत में कमी हो गई.
And my intention, my aspirations have decreased.
हिम्मत में कमी होना सबसे बड़ी बुजदिली है.
He said the biggest cowardice is when a person's intentions become small and weak.
और हिम्मत होना बड़ी बड़ी बहादुरी है.
And having high aspirations is one of the best forms of courage.
हम समझते हैं कि बुजदिली है कि दुश्मन को देख के भाग जाना.
We think cowardice is to look at the enemy and run away.
और बहादुरी है कि खड़े रहना.
And that being brave is to stand up in front of the enemy and not to turn your back.
उसका ताल्लुक भी बुजदिली बहादुरी से ही है.
So that definitely is also connected to cowardice and bravery.
लेकिन असल बहादुरी ये होती है कि आदमी हिम्मत से खड़ा हो जाए अल्लाह के हुक्मों पर.
He said, but the reality of courage is a person stands up with steadfastness on the commandments of Allah.
असल बुजदिली ये है कि आदमी डर जाए हालात से और हिम्मत ना कर सके.
And the real cowardice is a person cowers down from standing up to the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala.
हम सब जानते हैं कि बुजदिली ये ईमान की सिफात में से नहीं है.
And we all know cowardice is not one of the attributes and qualities of iman.
बहादुरी है ईमान की सिफात में से.
Instead, courage is the quality of iman.
हमें पता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बहादुर थे.
We know how courageous the Prophet alayhi salatu wasalam was.
आपकी बहादुरी के अंदर ये तक आता है कि अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि जब मैदान-ए-जंग में आंखों में खून उतर आता था और मैदान-ए-जंग गर्म होता था और तलवारों और नेजों की झनकारें सुनी आ रही होती थी, उस वक्त जब हम थक जाते थे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आड़ में आपकी पीठ के पीछे थोड़ी देर रेस्ट लेने के लिए खड़े हो जाते थे.
It is mentioned, Ali ibn Abi Talib says that when the battle would be at its peak and the swords would be clashing and everyone could hear screams and yells from the battlefield and blood would come into the eyes, meaning that this is a person is seeing death in front of him. And in the thick of that, in the heat of the battle, when someone wanted to rest, we would go hide and stay behind the Prophet sallallahu alaihi wasallam, take rest and shelter behind the Prophet sallallahu alaihi wasallam for some time.
हमें बहादुरी सिखाई गई.
He said, "We have learned courage from the Prophet sallallahu
alaihi wasallam.
And the biggest courage is that a person has aspirations to establish and remain steadfast in the commandments of Allah. To make intentions to remain steadfast in the commandments of Allah.
इसलिए जो लोग अपने मकाम पर अल्लाह पाक के हुक्मों पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर रहने की जुरत कर लेते हैं वो बहादुर हैं.
So those people who stay back at their home and remain steadfast and make intention to remain steadfast in the commandments of Allah, those are the courageous people.
और जो हालात से मुतासिर होकर ढीले पड़ जाते हैं वो कमजोर हो गए उनके अंदर बुजदिली के असर है.
And then those who stay back at home and get affected by the conditions around them and lost their strength in remaining steadfast in the commandments of Allah, those are the ones who have lost their courage.
हम चूंकि हम बहादुर नहीं दिखा सके बुजदिल हो गए इसलिए हम हिम्मत हमने इरादा नहीं किया निकलने का.
So he says, why have we not been given our intentions if we have not yet? It's because we have lost the courage.
किसी के लिए हो सकता है कि वाकईतन भी कोई उज़्र हो मजबूरी हो.
But then there are certain people maybe who actually do have such conditions that do not allow them to go.
मगर अपनी इस्लाह के लिए हमें यही सोचना है कि मेरी वाकईतन मजबूरी नहीं थी बस मेरी कमजोरी थी जिसकी वजह से मैं हिम्मत नहीं किया.
But for our own rectification, we should not try to come up with excuses. Instead, we should say, I am not going because of my own weakness and because of cowardice overtaking.
और अल्लाह से माफी मांगे.
And then we should seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala.
और तौफीक मांगे.
And we should ask Allah subhanahu wa ta'ala for tawfiq.
अगर माफी और तौफीक का सिलसिला जारी करेंगे तो अल्लाह पाक हमें भी अपने मुबारक रास्ते में निकलने की तौफीक देगा.
He said, if we continuously seek forgiveness from Allah and ask Allah for tawfiq, then inshallah Allah will also accept us.
मगर अल्लाह पाक का एक बहुत बड़ा एहसान है.
But Allah has blessed us.
हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से
हैं. We have been chosen to be part of the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
हमारे लिए दीन की मेहनत करने के चांस दोनों तरह से हैं.
We have two opportunities to make the khidmat of deen.
अगर हम अल्लाह के रास्ते में जाएं तो भी दीन की मेहनत का मौका है.
If we go on the path of Allah, we can make the khidmat of deen.
और हम किसी वजह से ना जा रहे हो तो भी खिदमत का मौका है, दीन की मेहनत का मौका है.
If we're not able to go on the path of Allah, we can also make the khidmat of deen.
हम सब जानते हैं कि हमें बड़ी तादाद वो होगी जो अपने घरों को जा रही है अल्लाह के रास्ते में नहीं जा रही.
Then we know that a large portion of the crowd is going to be going back to their homes and not going on the path of Allah.
और इसका ये मतलब नहीं है कि दीन की मेहनत हमारे लिए नहीं है.
So this does not mean the effort of deen is not for us.
दीन की मेहनत के दो तरीके होते हैं.
There are two ways and methods of the effort of deen.
एक मकामी मेहनत.
One is a local effort.
और एक नकल मकान की मेहनत.
And one is the effort which you leave your home.
खुरूज की मेहनत.
The effort of खुरूज.
तो खुरूज के जरिए से जब मौका मिलेगा तो खुरूज करके मेहनत करना.
When we are capable and able to do the effort of खुरूज, then we should do that.
और अगर उसका मौका किसी वजह से ना मिला तो अपने मकाम पर मेहनत करना है.
Then if that opportunity is not given to us for some reason, then we need to do the effort of the local effort.
मेहनत करेंगे तो मेरे दोस्तों इस फिक्र में अमलन हम शरीक होंगे कि वाकईतन हमारे अंदर और पूरी इंसानियत में पूरी उम्मत में दीन कैसे जिंदा हो जाए.
If we give our time and effort to this, inshallah we will be regarded as a partner, as an investor in this beautiful effort of deen.
सब मेहनत के लिए तैयार हैं दोस्तों इंशाल्लाह.
Are you all ready for the effort of deen? Yes, inshallah.
ये कहते हैं कि अपने घरों में मेहनत शुरू करो पहले.
So first we start effort at home.
उन लोगों के लिए ये बात हो रही है जो घर जा रहे हैं अभी जमात में नहीं निकल सक रहे.
This is for those who are staying back at home.
अपने घर को आबाद करना है.
That we have to keep our home alive.
आमाले नबुवत से आबाद करना है.
That we have to keep our home alive with the आमाल of नबुवत.
आमाले दावत से आबाद करना है.
With the आमाल of दावा.
इबादतों से आबाद करना है.
इबादत, we have to keep our homes alive.
सुन्नतों के अहिया से आबाद करना है.
We have to revive sunnah in our homes.
अपने घरों की मुआशरत, अपने घरों की जिंदगी सुन्नत वाली हो जाए.
That our whole life at home should be in accordance to sunnah.
इसके ऊपर वर्क कैसे किया जाएगा उसको हमारे बड़े बताते हैं.
How can we accomplish this? Our elders teach us.
रोजाना अपने घरों के अंदर तालीम का इंतजाम.
Every single day we should do the तालीम at home.
कितने फितने मेरे दोस्तों घरों में तालीम जिंदा होने से घरों के खत्म हो जाते हैं.
How many fitnas at home have come to an end just because of the effort of तालीम at home?
आमतौर पर जो आदमी घर में वाइज बन जाता है उसकी बात बहुत कम सुनी जाती है.
Is it someone who becomes a person who's always giving lectures at home? Very
ना बच्चे उसको पसंद करने लगते हैं ना बीवी.
The wife and the kids do not like him anymore.
क्योंकि हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो सामने होती है तो उसकी वजह से. अब हमारी चूंकि अपनी कमजोरी होती है तो जिसकी कमजोरी लोगों के सामने होती है उसके बात का असर बहुत कम होता है.
So now what happens when the wife and the kids become tired of our talks? He said, because the character we have at home does not correspond with the role of being a giver of advice. But in reality, the person of Iman, his character should be at the highest
Especially
those involved in the effort of Dawah and Tabligh, their character at home should be at the finest,
highest.
Because the Prophet ﷺ was the best for his family. And we've been ordered to follow the Sunnah.
The
Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Who in reality is a person of good akhlaq? That judge will be, the judgment will be made at home."
जब आदमी बाहर की ज़िंदगी में आता है लोगों में,
so when a person comes out in the public,
तो उसके असली अखलाक होना ज़रूरी नहीं है.
It's not necessary that his original real character is being shown.
ये वो artificial होते हैं.
It could be very well artificial.
वो commercial होते हैं.
And that is commercial अखलाक.
कारोबारी अखलाक बोलते हैं इसको.
That is the business related character.
क्योंकि आप मुझसे मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं, मैं आपसे मुस्कुराते हुए बात कर रहा हूँ.
He said, because you're smiling and speaking to me, I have to smile back and speak to you.
आप मुझे चाय का ऑफर कर रहे हैं, मैं आपको चाय का ऑफर कर रहा हूँ.
You're offering me tea, I have to offer you tea.
हम दोनों एक दूसरे के लिए बड़े अच्छे अखलाक वाले हो जाते हैं.
So that we have good character with one another.
मगर घर के अंदर ये बात नहीं होती है.
But at home this doesn't happen.
अगर मैं आपके साथ ऐसा ना करूंगा तो आप बोलेंगे शायद इसको दीवाने कुत्ता काटा है.
He said, if I don't act like this with you, you might have said this person got bit by a mad dog.
इसलिए बाहर हमारे अखलाक ज्यादातर आर्टिफिशियल होते हैं.
That's the majority of the time the character outside is artificial.
घर के अंदर आदमी तंगी में होता है, आसानी में होता है.
He said, at home a person is at times in ease or in difficulty.
युसर में होता है, अवसर में होता है.
He's in good conditions or difficult conditions.
गुस्से में, नाराजगी में होता है, खुशी में
होता है. Sometimes happy, sometimes angry.
तो वहाँ पे अंदरून आदमी का जो है ना वो बाहर रहता है.
That's why what you are inside comes out outside.
उसमें अगर कोई आदमी अखलाक वाला है तो मैं समझ लूं कि वाकईतन वो अखलाक वाला है.
So at that time if someone is a person of akhlaq and is able to handle himself properly at home, then that person genuinely is a person of good character.
इसलिए आपने फरमाया कि अहसनुकुम अहसनुकुम खुल्कन ली अहली.
That's why the Prophet ﷺ said that the best amongst you is the one who is best in his family.
इसलिए दावत वाले साथियों को वैसे भी अखलाक सही रखने हैं, लेकिन घर वालों के साथ स्पेशल अखलाक अच्छे रखने.
That's why the brothers in the effort of dawah outside, generally of course you have to make effort on akhlaq, but at home especially you have to make extra effort to improve our character.
तबीयत में नरमी हो.
That we should have softness in our temperament.
चीखना चिल्लाना ना हो.
Screaming and yelling is not okay.
छोटी छोटी बातों पर शिकायत ना हो.
We should not complain over small matters.
नमक ज्यादा हो गया, मिर्ची ज्यादा हो गई.
Too much salt, too much pepper.
एक बुजुर्ग का इंतकाल हुआ.
One sheikh, he passed away.
दूसरे शेख के ख्वाब में आए वो.
He came in the dream of another sheikh.
और नेक अच्छे ख्वाब जो होते हैं ये मुबशरात में से होते हैं, बड़ा फायदा होता है, तक़वियत मिलती है.
He said good dreams they are a gift from Allah Subhanahu wa Taala to strengthen a person.
तो उन बुजुर्ग ने पूछा इनसे कि आपका इंतकाल हो गया, आपके साथ अल्लाह ने क्या मामला किया.
He said that you passed away, how did you fare with Allah?
फरमाया अल्लाह पाक ने मुझे एक ऐसी चीज पर बख्श दिया कि जिसका मैं मुझे गुमान भी नहीं था.
He said Allah has forgiven me on a lieu of something which I didn't even think of.
वो ये है कि घर वालों के पकवान में जो कमी होती थी मैं कभी बोलता नहीं था इसको.
He said that my family, whatever food they used to cook, any type of things that were cooked in a manner that I didn't like, I never spoke up.
ना मैंने कभी नमक की कमी ज्यादती की शिकायत की.
I have never said that there was too much or too less salt.
ना सालन खाना जल गया है, नहीं जला है, कच्चा रह गया, इसकी शिकायत.
Or that the food was burnt, or it was overcooked or undercooked.
बस जो बिचारी मेहनत करके पेश कर देती वो मैं खा लेता.
But whatever she made effort and prepared, I would eat it.
और अल्लाह का शुक्र अदा करता.
And I would thank Allah Subhanahu.
और इसका भी शुक्रगुजार होता कि अगर ये भी ना करती तो मैं क्या करता.
And then I'd be thankful that even if she didn't do this, what would I do?
बस अल्लाह पाक को इस बात पे मेरे प्यार आ गया.
He said Allah Subhanahu just loved this action of mine.
कि तुम अपने घर वालों के साथ इतने नर्म थे, लिहाजा हम भी तुम्हारे साथ नर्म.
And he said, you are so soft with your people at home, your family, that we will also be very kind and soft with you.
मेरे दोस्तों, घर वालों से बड़ी शिकायत है हमारी.
That's why, unfortunately, the family members have a lot of complaints.
और हुस्न मुआशरत इस्लाम का हुक्म है.
And ensuring that our social conduct is good is the command of our deen.
مُعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوف.
Allah clearly says that treat the families in the best possible manner.
Nafqa, kiswa, sukuna, inke alawa, chautha haq, aajiruhunna bil maruf hai.
Besides the maintenance, besides taking care of the food and the home and etc., besides that clothing, we have to ensure that our akhlaq with them is a command of Allah, straight from the Quran, that the akhlaq and character have to be of the highest degree.
Aur zubani tabligh se amali tabligh ye jo hoti hai, achhe akhlaq wali, ye zyada muasir hoti hai.
the tabligh that takes place, the da'wah through actions is much more powerful than the da'wah through the tongue.
हम अपने घरवालों में मेहनत करना चाहते हैं दीन की, तो पहले अपने हम अपने अखलाक को दुरुस्त करना भी जरूरी है.
He says, if you want to make effort of deen at home, then the first thing we have to do is improve our akhlaq.
हमारे अपने ससुराल वालों का तज़किरा हमारी ज़ुबान पे नहीं होना चाहिए बेइज्जती के साथ.
He said, we should not be mentioning our in-laws in any type of unfashionable or disrespectful manner.
ना अपनी बीवी के साथ बेइज्जती का बर्ताव होना चाहिए.
Never should we be disrespecting our wife.
दुनिया का उसूल है इज्जत दो इज्जत लो.
The rule of the dunya is that in the world is that if you give respect, you get respect.
हम अपने घर वालों को और उनके खानदान वालों को इज्जत देंगे तो फिर अल्लाह पाक हमें वो हमें हमारे साथ इज्जत से पेश आएंगे.
He said, if we give our family and their families respect, then inshallah we will also get the respect from them.
लोग घरों के हालात को सही करने के लिए ताबीदों में, फलीतों में, दुआओं में, इनसे उसे दुआ कराने में और दवाओं में इसमें लग जाते हैं. असल इलाज ये है उसका.
He says, people when they see their conditions at home have worsened, they try to get ambulance and they try to get medication, try to get dua from this one and that one. In reality, the root cause of all of this is bad character.
तो इसलिए बाद मर्तबा बाद नसीहत वाला जो अंदाज होता है घर में ये मुआसिर होने के बजाय नुकसानदेह हो जाता है.
So the solution to these problems is through good character, for the bayan type of islah at home, giving lecturing at home at times instead of rectifying things makes things worse.
ऐसे घरों की इसलाह हमने देखी है मेरे दोस्तों तालीम के जरिए से कि जिनके बारे में सोचा नहीं जा सकता.
He said, we've seen such homes come right which we never dreamed that they'll come right just through the barakah of ta'lim.
aur aisi aisi gandagiyan aur kharabiyan aur bepardagiyan aur behudiyan gharon se nikal gayi ta'lim ke zariye se ke jiske bare mein shohar aajiz ho chuka tha aur ye tay kar chuka tha ki ye sahi nahi ho sakta.
He said such families which the husband thought that my family will never come right, that this aspect of loss of modesty that is taking place in the home will never come right, you've given up, but through the barakah of ta'lim those doors of sin all closed and alhamdulillah greatness came, goodness came to the homes.
Sabse isliye behtar rasta ye hai ki rozana taleem ghar mein rakhi jaye.
That's why the best thing, first important thing is to daily have taleem at home.
Aur koshish ki jaye ki ghar ke sare afraad usme jama ho.
And we should make an effort that all the members of the home are participating in that taleem.
Is tarike se inshallah taala bahut fayda hoga mere dosto.
Inshallah there will be a lot of benefit through this.
Aur usme wo sare kaam honge jo hum masjid mein ya hamare masjid ke jo amal hote hain uske andar jo karte hain.
All the amal that we do in the masjid will take place there in home.
Uske andar tajweed ka halqa bhi hoga.
We'll have a halqa of tajweed as well.
Uske andar iman ke se sifat ka muzakara bhi hoga.
We'll have the muzakara of the six qualities as well.
Usme kitab padhna bhi hoga.
We'll also read from the book.
Muntakhab bhi padhi jayegi.
Muntakhab will also be read.
Fazail e amal padhi jayegi.
Fazail e amal will also be read.
Fazail e sadaqat padhi jayegi.
Fazail e sadaqat will also be read.
Aajkal fazail e sadaqat padhne ka riwaj bahut kam ho gaya.
Is it nowadays people rarely read fazail e sadaqat.
Aap padh ke dekhe to pata chalta hai ki fazail e sadaqat mein kya Allah pak ne asar rakha hai.
He said, if you just pick up Fazail al-Sadaqat and read it, you will be amazed at what effect Allah has put in that book.
ऐसी तब्दीली ज़िंदगी में उससे आती है कि अंदाज़ा नहीं किया
जाता. You cannot imagine the change that comes into a person's life who reads Fazail al-Sadaqat.
घर के अंदर मेरे दोस्तों ये तीनों अमल
All three amal should take place.
और तश्कील भी हो. आजकल मरकज से ये बात कही जा रही है कि घर में रोजाना तश्कील भी हो.
He said, now मरकज भी saying that every day at home we should also be तश्कील.
तो पूरे अमल पांच अमल जो है वो अंजाम दिए जाए वहाँ.
So all the five amal should take place at home.
इसलिए घरों के अंदर अगर हम तालीम का आज़म कर लें तो मेरे दोस्तों ये हमारे लिए अच्छा काम हो जाएगा.
He said, if we make intention, inshallah, for make a determination to do ta'lim at home, this will be a very good benefit for us.
सब करेंगे.
We will all do this, inshallah.
एक गुजारिश है कि सबसे पहले वो लोग हाथ उठा दें जिनके घरों में तालीम ऑलरेडी होती है. ओह माशाल्लाह, जिनके पास होती है उनकी बात अर्ज कर रहा हूँ.
He said, all of you who have ta'lim already at home, raise your hand.
माशाल्लाह. अब मेरे दोस्तों उन साथियों से दरख्वास्त है कि जिनके घरों में नहीं होती है वो हाथ उठा दें कि इंशाल्लाह हम शुरू करते
हैं.
होने वाले भी सारे उठा दिए ऐसा. जिनके घरों में तालीम नहीं होती वो अज़्म लेकर जाएं कि इंशाल्लाह आज से हम तालीम शुरू करेंगे.
इस दोस जो ना खलक ऑफ तालीम होम लेट्स टेक दिस अज़्म एंड इंटेंशन नाउ दैट फ्रॉम टुडे इंशाल्लाह वी स्टार्ट तालीम होम.
और मेरे दोस्तों हमारी जो मस्जिद है वो उस मस्जिद के अमाल में बराबर हम शरीक हों.
And then we need to participate in the अमाल of our masjid.
आजकल मरकज से निजामुद्दीन से जो बात बहुत ज्यादा कही जा रही है वो ये है कि मस्जिद आबाद वाली मेहनत आबादी मस्जिद वाली मेहनत मुसलसल की जाए.
He said, we've been told again and again from the Markaz Nizamuddin that keep the effort of our masjid abadi, participate in that.
Maqami ahbab masjid mein is tarah apne aap ko lagaye aur waqt dein ki 24 ghante ke liye masjid abad ho jaye.
That the local brothers should give so much time to their local masjid that 24 hours a day the masjid should remain alive.
जैसे मस्जिद नबवी आबाद थी.
Just like Masjid Nabawi was.
हमें आमाल नबुवत आमाल दावत से ऐसे आबाद करना है अपने घरों को अपनी मस्जिदों को کہ وہ نقل ہو جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی محنت کی اور حضرات صحابہ کرام کی محنت.
عبادت و دعوت and اعمال مسجد نبوی should be so alive within all of our masajid that it would be a replication or an attempt to replicate the effort that was done at the time of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم.
ہر وقت اور خاصا وقت ہمارا مسجد میں گزرے.
And a good portion of our time should be spent in the house of Allah.
جو لوگ مسجد کے اندر اپنا وقت دیتے ہیں وہ ان کے ایمان کی گواہی لو.
He said that we've been told that
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ماقال علیہ الصلوۃ والسلام.
We've been told by the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم to give bear witness to the iman of those who keep frequenting the masjids.
حضور نے یہاں تک فرمایا کہ مسجدیں تو ایمان والوں کا گھر ہیں.
To this extent he said that the masjid is the house of the people of iman.
فرمایا مسجدیں ایمان والے کے لیے ایسے ہیں جیسے پانی کے لیے مچھلی ہے.
It's been mentioned that the masjid is such for the people of iman just like water is for the fish.
اور مسجد منافق کے لیے ایسی ہے جیسے پانی کے باہر مچھلی کو رکھ دیا گیا ہو.
And masjid is like that for a hypocrite as though if a fish were to be taken out of water.
ایمان والے کی بات یہ ہے کہ مسجد میں آئے تو نکلنے کو دل نہ کرے.
A person of iman when he enters the masjid he doesn't want to leave.
آج جو ہماری حالت ہو گئی ہے کہ کب نہ امام صاحب سلام پھیرے ہوں کب میں بھاگوں اور پانچ منٹ میں رہنے کو طبیعت تیار نہیں ہوتی ہے تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے.
He said now they we see that we're waiting when can the imam say salam so we can run out of the masjid and if even 5 minute delay should not take place this is the weakness of iman.
Ek aadmi mazdoori karta tha.
A person used to labor.
Magar wo ye kehta tha ki jab namaz ka waqt hoga main masjid mein chala jaunga.
So he used to say whenever the time for salah comes I'll go to the masjid.
Ek bahut bade maldar aadmi ne usko apne liye hire kar liya.
One very wealthy person hired him.
Wo uske kaam kar raha tha.
He was working with him.
Ek martaba bazaar mein samaan lane ke liye nikla.
One time he went out to the marketplace.
وہ مالدار آدمی بھی ساتھ نکلا.
The wealthy person walked with him.
اور یہ خادم کو بھی ساتھ لے لیا.
He took the servant with him.
وہاں خریداری کر کے اس نے سامان اس کے سر پہ رکھ دیا.
There he took all the goods and he put it on the head of this servant.
واپس آ رہے تھے کہ اذان ہو گئی.
On the way back اذان was called.
اس نے اپنا گٹھڑا سر پہ سے اتارا مسجد کے باہر رکھ دیا.
He said he took all the stuff that he was carrying on his head and he put it outside the masjid.
کہے گا میں اندر جا رہا ہوں نماز پڑھ کے آؤں گا.
He said I'm going inside and I pray the masjid, pray salah.
وہاں نماز میں لگ گیا.
He got busy in salah there.
فرض کے ساتھ سنتوں میں لگ گیا.
After fard he started praying sunnah.
یہ صاحب نماز نہیں پڑھتے تھے.
This person would not pray salah.
ان کو ایک ایک منٹ بھاری ہو رہا تھا.
Every minute seemed so much.
تو انہوں نے اس نے باہر سے آواز لگائی کہ ارے کیا ہوا نکلتا کیوں نہیں.
He said from outside he screamed out to his servant said hey why don't you come out of the masjid. What's taking so long?
تو اس نے اندر سے کہا کہ وہ مجھے نکلنے نہیں دے رہے.
He said he's not letting me come out.
بولے وہ کون ہے جو میرے نوکر کو نکلنے نہیں دے رہا.
He said who is there that doesn't allow my servant to come out from this masjid and come to me.
کہہ لے کہ جو تجھے اندر آنے نہیں دے رہا وہ مجھے باہر جانے نہیں دے رہا.
He said the one doesn't let you come inside is not letting me come outside.
ایمان والے کا جی لگتا ہے مسجد میں.
The person of iman he enjoys every minute in the masjid.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کی مسجد کے قدم مسجد کی طرف زیادہ چلنے کے عادی ہوتے ہیں وہ لوگ وہ ہیں جو جن کے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے اور درجات کی بلندی بھی ہوتی ہے.
He said those who are habitual of walking more to the masjid then their walking to the masjid will be a means of forgiveness of their sins as well as elevation of their status in Jannah.
اور جو نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں ان کے گناہوں کا بھی کفارہ ہوتا رہتا ہے اور درجات بھی بلند ہوتے رہتے ہیں.
Those who are waiting who are habitual to wait for salah in the masjid their also sins are being forgiven and their levels in Jannah increase.
جب تک آدمی انتظار کرتا رہتا ہے مسجد میں اس وقت تک وہ نماز ہی میں ہوتا ہے.
As long as a person sits in the masjid waiting for salah he will be regarded as though he is in salah.
اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں.
And the angels continue to pray for him.
اس لیے ہم مسجد کو جتنا زیادہ وقت دینے کے عادی ہوں گے میرے دوستوں اتنا زیادہ ہمارے لیے بھی بھلا اور ہماری کمیونٹی کے بھی بھلا پوری امت کے لیے بھلا ہوگا.
The more we make ourselves habitual of spending extra time in the masjid the better the higher the better the barakah for us and our entire community and the entire ummah.
اور اس میں جو ہمارے لیے اعمال دعوت مقرر کر دیے گئے اس میں ہمیں اپنے آپ کو لگانا ہے.
The اعمال of دعوت that have been stipulated for us we should keep ourselves busy in that.
اس میں عبادت اور ذکر بھی ہے.
عبادت اور ذکر is part of
that. اس میں خدمت بھی ہے.
And service and khidmat is part of it.
اس میں دعوت بھی ہے.
And also دعوت is part of it.
اس کے اندر تعلیم و تعلم بھی ہے.
Learning and teaching is also part of it.
جو کام جماعت میں خارج ہو کے نکل کے آدمی کو کرنا ہوتا ہے وہی کام اپنے مقام پہ مسجد میں کرنا ہوتا ہے.
The same thing that we do when we go out in path of Allah, the same amal we have to do in our own local masjid.
نشتے کر کر کے لوگوں کو مسجد میں لانا.
Then we have to do jola and bring people to the masjid.
ایمانیات کا مذاکرہ کرنا.
And then have a discussion on iman.
دعوت کی بات اس کے سامنے سمجھانا.
Explain the effort of dawah.
اس کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے آمادہ کرنا.
And to encourage him to go out in the path of Allah.
روز کی محنت ہو میرے دوستو.
This is the daily effort.
تو اگر ایسی چیز ہوگی تو ہر مسجد سے پوری دنیا کے تقاضے پورے ہوتے رہیں گے.
If this is the case, then every single masjid can fulfill the taqaz of the entire alam.
جس صورتحال سے اس وقت ہم دوچار ہیں وہ نہیں رہے گی.
The condition that we currently face will come to an end.
एक मस्जिद से एक जमात निकलना मुश्किल है. कई कई मस्जिदों को मिला के हम चंदा करके एक जमात निकालते हैं.
He says it's as though we collect from all different masajid and make one jamaat from multiple masjids.
वैसा नहीं है. एक मस्जिद से जमात निकलने की आदत हो.
He said we should have a habit of taking out one jamaat or more from the same masjid.
और एक मस्जिद से पूरी दुनिया के तकाजों को पूरा करने वाली जमातें निकलने वाली हो.
And such jamaat should come out that can fulfill the taqaza of the entire world.
यानी बेरुने मुल्क जाने वाली भी जमातें हो.
That such that can go out to foreign
countries. अंदरून में चार-चार महीने की भी जमातें हो.
And they can spend 4 months locally as well.
40 दिन की भी जमातें हो.
And for 40 days as well.
और 6 रोजा भी बराबर निकलता रहे.
And then the regular 3 days.
और नए साथियों की तश्कील होके उनको भी जोड़ा जाता रहे.
And new साथी are also joining.
ये सारा काम मेरे दोस्तों अपने मकाम पे रहके करने का है.
All of this stuff has to be done in our local masjid.
तालीम रोजाना की मस्जिद में भी हो.
तालीम should be done in our masjid every day.
हफ्ते में 2 फ़ज़्लें ये इत्तेमाम से हो.
2 जौलस a weekly should be done.
और मशवरे में हम बराबर शरीक रहें.
And we participate in the mashwara.
आमतौर पर ये कि ये 10 साथी, ये 5 साथी, ये 3 साथी जो है ना मस्जिदवार जमात के लोग हैं, मस्जिदवार जमात के, मस्जिदवार जमात वो पूरी की पूरी है जो मस्जिद में बहसीत मुसल्ली आती है.
इस मस्जिदवार जमात is not just 3, 4, 5 brothers who sit for mashwara taaleem. It's that every single person who comes and performs salah in the masjid is called the mashwara jamaat.
और सब मिलके फिकर करना है.
And all of us have collectively have to make fikr.
मैं एक मर्तबा निजामुद्दीन में था तो वहाँ एक जोक हो गया.
He said once I was in Nizamuddin and it's a joke to place.
वहाँ बड़े कहते हैं कि भाई मस्जिदवार जमात में लोग बैठ सर जोड़ के बैठे हैं.
He said everyone should put their heads together and sit in the masjidwar jamaat.
तो एक गांव के लोग आए हुए थे.
So some group of visitors came.
उनसे मुजाकरा हो रहा था, कारगुजारी ली जा रही थी.
So कारगुजारी is being taken from them.
कहले कि रोजाना मशवरा होता है.
He said do you have मशवरा every day?
सर जोड़ के बैठते हो.
Do you put your heads together?
तो जमात होती है. जब हम प्लेन में सफर कर रहे होते हैं तो जमात नहीं होती वो.
So when you are traveling by plane, you don't call that a jamaat.
हालांकि 200 आदमी बैठा हुआ होता है.
Because there are 200 people sitting.
हम ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तो जमात नहीं होती वो.
All those who are sitting in a train are not going to be called part of a jamaat.
हालांकि उसमें सैकड़ों आदमी बैठा हुआ होता है.
There are thousands there.
हम जब बस में सफर कर रहे होते हैं तो जमात नहीं होती वो.
In a bus also you don't call the passengers a jamaat. हालांकि
बस पैसेंजर से भरी हुई होती है.
Because the passengers are filled up the bus.
वो जमात क्यों नहीं है?
Why is it not a jamaat?
इसलिए कि सबकी फिक्र एक नहीं है.
Because everyone has does not have the same fikr.
जमात फिक्र को मुश्तमा करने का नाम है.
जमात इज टू गेट द फिकर टुगेदर.
तो मस्जिदवार जमात का मतलब मस्जिद के आने वाले मुसल्लियों की सबकी एक फिकर भी हो.
The masjidwar jamaat should be that everyone is coming to the masjid should have the same fikr.
रोजाना की फिक्रों में हम हिस्सा लें.
That every day's fikr, every day's fikr we should participate.
उस फिक्र में जो तकाजे सामने आते हैं उसमें हिस्सा लें.
And then whatever taqazas are presented, we participate in that.
और मकामी मेहनत में से एक बड़ा हिस्सा ये है मेरे दोस्तों कि जब जमातें हमारे पास आए तो हम उनकी नुसरत करें.
One of the main components of the local effort is when jamaats from out of the area come to our masjid, we do their nusra.
जिस जगह आने वाली जमातों की नुसरत जिंदा रहती है वहाँ पर दीन जिंदा हो जाता है.
It's that community that has nusra, full nusra for the outside jamaats are coming, deen will come alive in those communities.
आजकल निजामुद्दीन में ये बात बहुत एहतमाम से कही जा रही है.
This is being said with much importance in Nizamuddin.
वो यूँ कह रहे हैं कि जब हिजरत करके हजरत साहबा ऐसी जगह पर गए तो मकामी लोगों ने उनको अलाउ तो किया कि तुम रह जाओ यहाँ, लेकिन नुसरत नहीं की. वहाँ को अल्लाह ने, वहाँ से अल्लाह ने दीन जिंदा नहीं किया. और जहाँ जब ऐसी जगह साहबा किराम गए जहाँ के लोगों ने नुसरत की तो फिर वहाँ पर अल्लाह पाक ने दीन का मरकज बना दिया.
He says those communities and those places where the Sahaba radhiyallahu anhum migrated from Mecca and they were only given a place to rest and a place to stay, but nusra was not actively done. Allah did not accept those places for deen to spread. And then those places that not only gave them the Sahaba a place to sleep and rest in a home, but beyond that, the full nusra, Allah subhanahu wa ta'ala chose those places for the service of khidmat.
तो जमातों की नुसरत करने की आदत होना.
That is why we have to make ourselves habitual of serving the jamaats.
और हम जमात ज्यादा ज्यादा जमातों की नुसरत इसको समझते हैं कि खाना खिला दिया.
He said, we think that serving jamaat means to bring more food.
खाना तो वो अपने साथ लेके आए हैं.
He said, food they have brought with themselves.
हर आदमी को उसके खर्च की हिम्मत के इतबार से ही तश्कील में तश्कील की जाती है.
That's why we told that a person should be able to go in tashkeel based on what he is able to afford.
40 दिन की जमात है तो इसमें जो खर्चा पॉसिबल है वो पूरा जमा होना पड़ता है तभी भेजा जाता है.
He said when a person is going out for 40 days, he has to collect the, he should have the money and the means to be able to spend those 40 days, then he goes out.
इसमें कोई शक नहीं है कि अगर खाने खिलाने की सआदत हमें मिले तो इससे अच्छी बात ही क्या है.
He said we don't deny the fact that if you get the honor of serving a jamaat food, alhamdulillah, this is great, we should do that.
मैंने यूसुफ सर रहमतुल्लाह का मजमू सुना है एक मौके पर, लेकिन मैंने डायरेक्ट नहीं सुना, लोगों से सुना.
इज वंस आई हैव हर्ड वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट यूसुफ रहमतुल्लाह,
फरमाया कि उससे ज्यादा बदकिस्मत बस्ती वाले वो नहीं हो सकते जो जो खाने न खिलाएं जमात को.
He says there could be no more degrading and for a community and be deprived of Allah's mercy for that community which does not feed those who are.
और वो जमात वाले बहुत ही खुश नसीब है जो जमात मकामी लोगों के इकराम करने से पहले अपना खाना खुद बना ले.
And he said how lucky are those jamaat brothers that before the local people bring the food they cook their own food.
तो जमात को तो अपनी फिक्र कर रही है कि वो खुद खाएं.
So the jamaat should make fikr that we should cook our own.
मकामी लोगों को इसकी फिक्र करनी है कि इनको चूल्हे में उलझाया ही न जाए.
And the local people should feel that they've come for a great effort. We don't want to make them busy in the stove and cooking.
मगर जमात भी यही सोचने लगे तो ये बहुत बुरी बात होती है.
But if the jamaat also starts thinking along these lines, then this is very bad.
ये उनके लिए आयब है.
This is something unacceptable.
और ये जमात के उसूलों के खिलाफ है.
And this jamaat is going against usul.
जहाँ जमात बैठी है बैठी इंतजार में बैठी हुई है कि कोई दावत करे हमारी.
The jamaat goes and is waiting that who's going to invite us.
हाँ, नहीं तो बस भूखे बैठे हुए.
Otherwise we're not going to eat anything.
ताकि सूरत से भी लोगों को दावत हो जाएगा. अरे इनको तो खिलाओ वरना मर जाएंगे.
He said so that these are faces speak and they look at people pity us and they look at our faces and they look at how these hungry.
Usrat ki aqeedat ye hai ki inke jis kaam ke liye ye aaye hain us kaam mein hum taawun kare.
The main usra is that whichever work they have come for we need to participate and help them in achieving their goals.
Walladheena aawu wa nasaru jinhone thikana diya aur nusrat ki.
Allah subhanahu wa ta'ala says aawu wa nasaru those who gave a place to rest and stay wa nasaru and then assisted.
Ek jagah farmaya ulaika yarjuna rahmatullah ye Allah ki rehmat ke umeedwar hain.
In one place Allah says these are the ones who are expecting and hopeful of Allah's mercy.
Ek jagah farmaya ulaika humul mu'minuna haqqan.
In another place Allah says those are the true, the ultimately true believers.
Ek jagah farmaya lahum maghfiratun 'inda rabbihim wa rizqun kareem.
In another place Allah says they have maghfirah, mercy, forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala and honorable provisions.
Isliye maqami mein hum sab jo apne apne jagahon par wapis ja rahe hain, apne gharon mein ja rahe hain, kisi wajah se हम जमात में नहीं जा सके तो अपनी जात पर अफसोस करते हुए शर्मिंदा होते हुए ये अज़्म लेकर जाएं कि हम मकामी मेहनत में भरपूर हिस्सा लेंगे.
For those of us who are going back home and are not going out in the path of Allah for the ijtima, then we should have a sense of remorsefulness. We should have a sense of sadness. We should be doing tawbah istighfar and make this intention that when we go back, at least we will definitely participate in all the local amal.
और मेरे दोस्तों हमारे बड़े ये कहते हैं कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं उनको जाकर जो काम करना है वो पाक उनके सामने भी लाया जाए और उनके सामने भी लाया जाए जो किसी वजह से नहीं जा रहे हैं.
He says, our elders have said that share the usul and the methods and what needs to be done in the path of Allah in front of those who are going, even as well as in front of those who are not going.
इसलिए हिदायत सभी के सामने सुनाए जाते हैं.
That's why the hidayah talk, the talk of where we discuss what needs to be done when we go to the path of Allah, is mentioned to everyone.
ताकि हमारा काम बिल्कुल वाज़े और क्लियर रहे.
So that our effort should become very
clear. वहाँ पर कोई चीज़ छुपाने की नहीं है.
There's nothing to hide here.
हम कोई नई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं.
There's no new planning being done.
बल्कि हम एक ऐसी मेहनत में लगे हुए हैं कि जिसकी वजह से हमारी फिक्र अल्लाह पाक की तरफ हो जाए, हमारी सोच अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए.
Rather our fikr and concern is of how our attention can be turned towards Allah subhanahu wa ta'ala.
इसकी इस दावत की मेहनत की बुनियाद यह है कि मखलूक खालिक की तरफ मुतवज्जे हो जाए.
The purpose of this effort is how can the creation turn their attention from the creation towards Allah subhanahu wa ta'ala.
Aur duniya se aakhirat ki taraf zehen hamara zyada chalne lage.
And that our attention can be moved away from this world to the hereafter.
Aur cheezon ke muqable mein amal mein hum zyada lagne wale
hain. Our attention can move away from things towards amal.
Aur amal ke zariye se Allah ke khazanon se lene wale bane.
And then through amal we learn how to take from Allah's treasures.
Aur amal wala yaqeen aa jaye.
And then the amal that we do will be filled with yaqeen.
Allah ke vaade amal par hain.
Allah's promises are with amal.
Ashiya par nahi hain.
Allah's promises are not with things.
असबाब पर नहीं अल्लाह पाक
Allah's promises are not with means.
बल्कि असबाब में जो अल्लाह ने हुकुम भेजा है उस हुकुम पर वादा है.
But rather the promises of Allah are with the commands that are hidden within the means.
तो हमें हुकुम पूरा करना आ जाए.
So we should learn how to fulfill the command of Allah subhanahu wa ta'ala.
इस वजह से हम तो इस बात की मेहनत कर रहे हैं.
This is what the effort we're doing.
इसीलिए जमात में निकलने वालों के लिए सबसे बुनियादी बात ये कही जाती है कि दो चीजों में तो बिल्कुल हाथ नहीं डालना है.
That's why two things we're told that those who go on the path of Allah, we should not involve ourselves in the least.
एक तो हमें सियासी बात नहीं करनी.
We should absolutely stay away from politics.
पूरी दुनिया के अंदर जो मसाइल खड़े होते हैं हमारे हमारे मुंह से सियासी बात निकलती है तब होती
है. He says problems happen in the world when we utter statements, political statements from our tongue.
हमारी जो सूरत हाल है हम इसके मुतहम्मिल नहीं है.
He says we are not capable of that.
इस वजह से हमें सियासी बात ही नहीं करनी.
That is why we should not speak anything to do with politics.
पहले के तबलीग वाले कहते थे कि भाई हमको देख के आदमी समझ जाए कि ये लोग या जमीन के नीचे की बात करते हैं या आसमान के ऊपर की बात करते हैं, बीच की करते नहीं.
He said earlier people would say that when you look at the brothers of Dawah, you realize that they speak about things that are below the earth and above the heavens, and nothing in between.
ये report उन जासूसों ने दी थी कि जिनको बाद लोगों ने कहा था कि दावत वाले करते क्या हैं जरा पता करो.
Someone went to go inquire, go see what these brothers of Dawah do. So then they came back and gave this report.
तो हमारे बारे में ये है कि हम या तो कब्र की बात कर रहे हों जो जमीन के नीचे की है, या जन्नत और जहन्नम की बात कर रहे हों जो आसमान के ऊपर की है.
Either we're speaking about the grave, which is below the earth, or we're speaking about paradise above the skies.
हाँ, ये एक ऐसी पॉलिसी है मेरे दोस्तों कि अगर इस पर जमात वाले मजबूती से कार्यबल रहे तो पूरी दुनिया के अंदर इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. और ये हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैह की फिरासत है कि अल्लाह पाक ने उनको ऐसा पॉलिसी साज बनाया.
He said, "This is the farsightedness of Maulana Ilyas Rahmatullahi that he made this. He was such an amazing policy maker."
और दूसरी अहम बात ये है कि हम मसाइल में दखल न दें.
And the second is that we do not involve ourselves in masail.
ये काम किसका है? उलमा का है.
This is the job of ulama.
उलमा किराम का बड़ा मुकाम है.
The ulama have a great status.
उनकी बड़ी इज्जत है.
It's a great honor for them.
आजकल हज़रत मौलाना साहब साहब दावत बरकातुहुम बहुत अहमियत से ये बात फरमा रहे हैं कि उलमा के देखने को इबादत समझा करो बिल इरादा.
He says, "One of the sad times keeps on saying now that when you look at ulama, do it with the intention of gaining reward."
जितना हम ulama से करीब होंगे, उतना अपना फायदा है.
The closer we become to ulama, the more benefit we will reap.
उनके पास ilm वही जिंदा मौजूद है.
He says, "Ilm wahi is alive with them."
दीन पर अमल करना अगर हम चाहें तो कैसे करेंगे? उनके पास है, हमारे पास नहीं है.
If I want to practice on the deen, how shall I do it? They have the answers to that.
हर लाइन के आदमी को हर शोबे जिंदगी के अंदर जो भी जिस तरह का भी कोई क्वेश्चन आए और ये हो कि अल्लाह की मर्जी के मुताबिक मैं करना चाहूँ तो कैसा करूँ, इस इल्म का को अवेलेबल रखने वाली जमात वो उलमा की होती है.
Any person in any facet of life, any portion of life wants to try to follow the deen in accordance with what Allah wants, how is he going to find the answer to that?
इसलिए
that is with the ulama.
इसलिए बहुत अहम है कि हम उलमा का इकराम करें.
That is why it's as utmost importance that we honor the ulama.
इसी वजह से जमात वालों को भी कहा जाता है कि जब तुम जाओ तो उलमा इकराम से जरूर मिलना.
That's why the brothers in jamaat are told that whenever, whichever area you go, go visit the ulama.
और उनकी तश्कील के चक्कर में नहीं पड़ना.
And do not get involved to try to make their tashkeel.
उनकी तश्कील के उलमा बिरादरी के लोग कर देंगे.
इसे देव उलमा वो लेकर तशरीफ.
हम तो सिर्फ दुआ की दरख्वास्त करेंगे.
वी आर गोइंग टू सिंपली आस्क फॉर दुआ.
हम कारगुजारी रखेंगे कि फलाने का कहते ये हुआ ये हुआ ये हुआ अगर वो मुनासिब समझे तो.
इसे इफ इट्स एप्रोप्रिएट दैट वी जस्ट शेयर विद देम द कारगुजारी ऑफ आवर जमात.
इसलिए जमात में जाने वालों के लिए मेरे दोस्तों जो उसूल बताए गए हैं उनको मजबूती से पकड़ना है.
दैट्स व्हाई दोस गोइंग ऑन पाथ ऑफ अल्लाह वी नीड टू होल्ड स्ट्रांग टू दीस उसूल.
हम कहेंगे कि हर आदमी में तहकीक का जज्बा आए.
That every person should get the desire for research.
जमात में निकलने के जरिए से ये डर आ जाना है कि कहीं कोई मसला गलत ना हो जाए मुझसे.
What research? That how can I not end up committing any type of doubtful or haram thing in my life?
हर ईमान वाले साथी में ये जज्बा आ जाए.
This desire should come into every person of iman.
लेकिन जब ये जज्बा आए तो इस जज्बे की तस्कीन कहाँ होगी? वो उलमा के पास.
Where will this desire be fulfilled? This desire will be fulfilled by at the hands of the ulama.
इसलिए हम खुद से मसाइल में न पड़े.
That's why we should not get involved in masail ourselves.
हाँ, खुद से मसाइल में पड़ेंगे तो इख्तलाफात होंगे.
If we get involved in masail, this will lead to dissension.
और इस उम्मत में इख्तलाफात से ज्यादा कोई बुरी चीज नहीं है.
And in this ummah, there's nothing worse than a difference of opinion.
इख्तलाफ ऐसी चीज है कि अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया जाता है.
And इख्तलाफ is something that a person becomes deprived of the mercy of Allah through dissension.
शब-ए-क़दर बताने के लिए फरिश्ते आ गए थे.
The angels had decided to share with the ummah which night is the night of Qadr.
सिर्फ दो आदमियों में लड़ाई हो रही थी.
Just the only thing happens that two people argue with one another.
Allah Pak itne naraaz hue ki farishton ko bula liya.
Allah was so upset he called the angels back.
Ab qiyamah tak ke waaste shab-e-qadr ki tayin kab hai ye utha di gayi ummat se.
Until the day of judgment the entire ummah is unaware what night exactly is Laylatul Qadr.
Ab andaaza farmaiye ki ladai kaisi badi cheez hai.
Imagine how horrible is dissension.
Ye jo hai na halqa hai moodne wali hai.
This is what the hadith calls us. It will shave it away from us.
और ये फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि बालों को मोड़ने वाली है, नहीं ये दीन मोड़ने वाली है.
The Prophet said, I'm not saying it shaves off your hair off of your head, but it will shave off your deen.
इख्तिलाफ करने वाला सिवाय दूसरों की गिबत करने के कुछ नहीं कर सकता.
The person who is differing and is causing dissension, all he ends up doing is does backbiting.
सबसे ज्यादा मजा उसको मुसलमान का गोश्त खाने में आता है.
He enjoys the most eating the flesh of a Muslim.
किसी
की गीबत करता है तो मुर्दा भाई हदीस कुरान पाक में मुर्दा भाई का गोश्त खाता है. उसके आयत को तलाश
करना
ये इंतहाई खराब होता है. This is something itself filled with false.
जो मुसलमान की आयत को तलाश करता है उस आयत में उसका मुब्तला होना जरूरी होता है.
The one who goes and seeks out faults of another brother, then eventually Allah subhanahu wa ta'ala will get that same person involved in the same faults.
Aur phir uski wajah se beizzati alag hoti hai.
And then the disgrace will be separate.
Ya ma'ashara man aslama bil lisani wa lam yubdil iman ila qalbihi la tattabi'u awratal muslimin fa innahu man yattabi' awrata akhihi muslim yattabi' illahu awratahu wa man yattabi' illahu awratahu yufdihu walau fi jawfi baytihi aw kama qala alayhi salatu wasalam.
Oh, the people, Rasulullah says, oh, the people who have simply believed or who have taken the words of faith by their tongue and iman has not reached their hearts, do not backbite the Muslims and do not seek out their faults. For indeed, the one who goes out in search and seeking out the faults of his fellow Muslims, Allah will go out to search and seek his faults. And the one who Allah goes to seek out his faults, Allah subhanahu wa ta'ala will disgrace him, even if he is sitting in the comfort of his own home.
इस वजह से मसाइल में जाने वाला आदमी इख्तिलाफ को जन्म देता है.
So the one who gets involved in masail, he will end up causing ikhtilaf.
Ye ulama ka kaam hai.
This is the effort of ulama.
Aur ulama jo ikhtilafi masail bayan karenge wo unki zimmedari hai.
He said the ulama who speak about differences of opinion and different masail, that's their responsibility of our hands.
Hamara apna kaam nahi hai usme jane ka.
We should not get involved in that.
Aur isse ye bhi malum hua ki ikhtilafat mein hame nahi jana hai.
That's what we understand, that generally speaking, we should not involve ourselves in differences.
Ummat ka jod zehen mein rehna bahut zaruri hai.
The unity of the ummah should be the paramount importance to all of us.
Sabse bada fitna ummat mein jod ko khatam karna hai.
The biggest fitna is to break the unity of the ummah.
Aur dushman hamesha is koshish mein raha hai, shuru tarikh se lekar Islam ki, ki musalmanon ke andar unme ikhtilaf zyada se zyada ho, taaki intishar ho aur wo aapas ki backbiting ke andar mubtala ho aur fir wo apne deen ko mudne wale khud hi ho, dusre mudane ki zarurat na pade.
Falsehood from day one has always had this goal to create dissension within the ummah, so that dissension will take away the nusra of Allah and that they themselves will ruin their deen. We do not need anyone else to come ruin it for them. They will ruin it at their own hands.
इसलिए जोड़ का काम है ये.
That's why this effort is an effort of uniting.
पूरी उम्मत को जोड़ना है.
We have to unify the ummah.
उम्मत को उम्मत बनाना है.
We have to make the ummah back to a true ummah.
कौमियत से हटकर सोचने की आदत.
That we have to stop thinking based on our land and our country.
जुबान से हटकर सोचने की आदत.
Away from just simply identifying ourselves with the people of our
language. वतन से हटकर सोचने की आदत.
Identifying ourselves with people of our own country only.
कलर से हटकर सोचने की आदत.
Identifying ourselves with the people of the same color only.
पूरे मुसलमान उम्मत वाहिदा.
The entire Muslim ummah is one ummah.
और वो हकीकी भाई हैं.
And they are true brothers.
इन्नमल मुमिनून इखवा.
Allah subhanahu wa ta'ala says, indeed, believers are our brothers.
और इखवा हकीकी भाइयों को कहते हैं.
And इखवा is used for real brothers.
तो पूरी उम्मत मुसलमान हकीकी भाई हैं.
The entire Muslim ummah is real brothers.
इसलिए कोशिश ये करना है कि उम्मत में जोड़ आ जाए.
That's why we should make an effort how the ummah can be unified.
इसलिए मेरे दोस्तों जमात में भी इसलिए निकलते हैं कि हम ये पूरी उम्मत के अंदर दीन की जिंदगी की मेहनत हो जाए.
That's why we go on the path of Allah subhanahu wa ta'ala so that the entire ummah can follow deen.
उसमें एक तरतीब है जो हमेशा हमारे सामने आती रहती है.
That tartib is there which we hear again and again.
तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी अगर हम उसको जिक्र करते हैं आपस में इस वक्त, वो इंशाल्लाह फिर हो जाएगा.
He says, inshallah, if we go through the entire details, it will take a long time. That will happen again.
चंद बातें उसमें से अलबत्ता आपके सामने आज की फिलहाल की जा रही
हैं. Our few main points will be discussed.
सबसे पहली बात ये है मेरे दोस्तों कि जब जमात जाए यहाँ से तो जो सुन्नत तरीके पर जाना है, आदत है, उसका अदब है, उसके एतबार से जाए.
He said, when the jamaat leaves from the locality, from this area, they need to follow the etiquette and the sunnah that's mentioned.
Amir, mamur, apne aap ko pehchan le.
Recognize who's the amir and who are the followers.
इसलिए जैसे यहाँ पे मुसाफिर के बाद में बच्चा मिलता है तो हर जमात वाले अपने अमीर के साथ थोड़ी देर बैठ जाएं और आपस में तारुफ हो जाए और जिम्मेदार अमीर मामूर पहचान ले.
He said, as soon as the musafa is done after the dua, then we should all the amir should sit with their jamaats and we get to know who's who.
जो जमात का जिम्मेदार है वो अमीर है.
The person who's responsible for the jamaat, he's the ameer.
जो अमीर है वो जिम्मेदार है.
Ameer is a responsible person. Same.
अमीर और जिम्मेदार. अमीर नहीं है, जिम्मेदार है का मतलब ये नहीं कि वो अमीर नहीं है. अब हो ये रहा कि अमीर मत बोलो, जिम्मेदार बोलो. तो अमीर जिम्मेदार बोलने का ये मतलब नहीं है कि वो अमीर नहीं है.
A person who is zimmedar means responsible person, and the one who is ameer, this is the same. There's no problem using both words.
मसला ये है असल में कि अमीर ही जिम्मेदार होता है.
The thing is that अमीर is the one who is responsible.
कहीं ऐसा ना हो कि अमीर में आमिरियत आ जाए, डिक्टेटरशिप आ जाए, इसलिए उसके लिए जिम्मेदारी का लफ्ज भी लगाया जाता है.
It's that in order to save the amir from a mentality of a dictatorship, the word zimmedar or responsible person has also been added.
वरना वो अमीर है.
But in reality, he is the amir.
हुजूर ने तो ये फरमाया कि अगर तीन आदमी भी जा रहे हो तो एक अमीर उसमें होना चाहिए.
The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if three people are going, one of them should be an amir.
और पूरी जमात की असल तर्तीब इताअत अमीर पर है.
And the entire jamaat is based on obedience of the amir.
जमात की सबसे बड़ी खुसूसियत उसमें अमीर है और अमीर की इताअत है.
One of the two main aspects of jamaat is that there is an amir and then amir is obeyed.
मैंने अपने पढ़ने के जमाने में उस्ताद साहब से पूछा था कि तबलीग वालों की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है.
He said, in my study days, I asked one of my teachers, what is one of the most amazing specialities of this effort of dawah?
فرمایا اس میں امیر کی اطاعت اتنے اہتمام سے کی جاتی ہے کہ اگر یہ اس پر قائم رہے تو پوری دنیا میں پھیل کے رہیں گے.
He said at that time that they follow the amir to such a level that if they remain steadfast on this one aspect, Allah will spread them throughout the world.
کہ جس کو امیر کی اطاعت آ گئی اس کو اللہ کے رسول کی اطاعت آ گئی.
He said because the one who knows how to follow his amir knows how to follow the
رسول. جو امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے.
Because Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said the one who follows the amir will in reality is following the Prophet Sallallahu
Alaihi Wasallam. اور جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے.
And the one who follows the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is following Allah Subhanahu Wa Taala.
سارا نظام تربیت کا میرے دوستو امیر کی اطاعت کے ساتھ شروع سے شروع ہو جاتا ہے.
So the whole system of tarbiyah starts off with following and obeying the amir.
इसलिए अपने अमीर की इताअत जरूरी है.
That's why to follow the amir is necessary.
उस अमीर की जिस जमात में हम चल रहे हैं.
That amir in whose jamaat we are involved in.
फिर हमारे इलाके का जो अमीर है उसकी इताअत जरूरी होती है.
So one is the amir of our jamaat and then one is the amir of our area.
और वो पूरे मुल्क के साथ में जुड़ा हुआ होता है.
And he's connected with the entire country.
और हर मुल्क निजामुद्दीन के साथ में जुड़ा हुआ होता है.
And the country is connected with the Markaz Nizamuddin.
और निजामुद्दीन की जो जिम्मेदार है उसके साथ में जुड़ा हुआ होता है.
And the Markaz is connected with the amir over there.
ये जो चैन है इस चैन में कहीं भी डिस्टर्बेशन होगा नुकसान हो जाएगा उम्मत.
Is anywhere in this chain wherever there is a broken link then the ummah will suffer.
ये बहुत अच्छी तरह ज़हन में रखना है हमको कि हमारे ज़हन में ये हो कि पूरे दावत का निज़ाम इस्तेमाई एतबार से पूरे वर्ल्ड के एतबार से एक है.
He said that's why we should keep this in mind that the entire effort of deen, effort of dawah based on its unification is around one system.
इसलिए पूरी दुनिया में एक ही तर्तीब से होता है.
That's why you see that wherever you go the tarteeb and the methodology is the same.
पूरी दुनिया में एक ही उसूलों के साथ होता है.
It is only through one usool, one rules everywhere.
पूरी दुनिया में यही छह नंबर की तरतीब है.
Six sifat are everywhere.
काम करने का नहज वही है.
Methodology of doing the effort is the same everywhere.
उसूल और तरीके वही हैं.
The methods and the usul are the same.
इसलिए इसका मरकज भी एक है.
That's why the markaz also the same.
इसलिए इसका अमीर भी एक है.
And that's why the amir is also the same.
इसलिए इताअत अमीर का ज़हन शुरू से ही होने का है.
From the very get go we have to have the mentality of obedience of amir.
जो जमात का हमारा अमीर है उसकी बात मानना आ जाए.
That's why we should learn how to obey the amir of our jamaat.
और खास तौर पर ऐसे मानना आ जाए जब तबीयत हमारी ना चल रही हो. असल तरबियत तो वहां होती है.
So the real tarbiyah happens when the amir says something which goes against our temperament, our desire.
तो पहले से पहचान के फिर दुआ के साथ इत्तेमाम के साथ में निकला जाता है.
He said, you get to know each other, then you make the dua and then you go out.
आमतौर पर जो आजकल ज्यादा मुजाकिरा निजामुद्दीन में हो रहा है मैंने मालूम किया साथियों से तो उन्होंने बताया कि ज्यादा इस बात पे हो रहा है कि जाते ही मस्जिद में जमात दुआ करके जब पहुंचे और नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ के बैठे तो सबसे पहले मशवरे में क्या करें.
Is the first one of the more important mudakaras that are being done regularly with Al-Mudin is that when the Jamaat arrives at a masjid with the Sunnah method, performs tahiyyat al-masjid and sits down for mashra, what should they discuss?
सबसे पहले नुसरत की बात की जाए वहाँ पे.
The first thing should be about nusra.
मतलब ये है कि वहाँ काम करने वाले जो साथी हैं उन लोगों को लेके बैठा जाए.
That take the local brothers who are involved in the effort and take them for the first sitting, for the first mashra.
और उनकी तश्कील की जाए.
And make their tashkeel.
कि भाई इस हम जब तक हम यहाँ पर हैं कौन हमारे साथ पूरे वक्त में रहेगा.
And who will join us for the amount of time we're going to be staying in your masjid.
फरमाया कि दावत की मेहनत के उसूल में ये है कि नुसरत के साथ में मकामी काम जिंदा होगा.
He said this is the usul that through nusra the local effort will come
around. हम मेहनत के लिए गए हैं दावत.
We have gone to do the effort.
तो वहां काम होने की शक्ल ये है कि नुसरत को वजूद में लाया जाए.
So in order for the work to spread in that area the local nusra has to take place.
तो वहां जो नुसरत करने वाले साथी हैं उनकी तश्कील.
That's why make tashkeel of the local brothers
who do nusra. सबसे पहली मुलाकात में ये हो.
This should happen in the first
पहली सिटिंग में ये बात की जाए.
In the first sitting.
और ये है कि जो लोग तैयार हो जाएं उनको बुला लिया जाए या खुद उनके घर पहुंच के बिस्तरों के साथ अपने साथ कर दिया जाए।
That whoever is ready, get their bistar, their bedding, and get them to sit with the jamaat.
और जो साथी आज आपके साथ नहीं आ सके, कल परसों आने के लिए बोले हैं, वो साथियों को कल परसों के अखबार से तश्कील करके वजूल कर लिया।
Those who say I cannot come today, but I'll come the next following day, then make their tashkil accordingly.
पहले ये काम करने का है।
This is the first thing we need to do, an arrival at the masjid.
और हर साथी तक पहुंचने की फिकर करना है।
And our effort is how we can reach to every brother who's involved in the effort there.
और ये है कि ये नहीं है कि साहब एक तरतीब है 40 दिन के अंदर इतनी जगहों पे फिर के आ जाने का है।
It is not that in 40 days we just have to make rounds of this many masjids and come back.
हम अपने खर्चे से निकले हैं, अपना खाना पीना है।
He said we have gone out with our own money and our own food.
ये तजुर्बे में आई है बात कि जब जाके मकामी लोगों के सर पे बैठ जाते हैं तो फिर वो 2-3 दिन खिला के इस इंतजार में होते हैं कि ये जमात कब जाएगी।
He said when we go sit on the heads of the local people expecting for them to feed us, then the local brothers also get fed up.
वो पहले पूछ लेते हैं कि तर्तीब क्या है, कब तक रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे।
That's why as soon as they arrive, they say, "Bhai, how long are you going to be here? When are you leaving?"
उनको बोलना है कि भाई हम सिर्फ यहाँ ठहरे हुए हैं, इत्तेकाफ किए हुए हैं मस्जिद में, हम अपना खाएंगे अपना पिएंगे, हम कब जाएंगे ये नहीं बोलते।
हो
सकता है कि हम 3 दिन में जाएं, 5 दिन में जाएं, हफ्ते भर में जाएं, 10 दिन में जाएं। ये फरमाया जा रहा है कि मकामी तौर पर जितने लोग हैं सबसे मुलाकात करके जब तक सब तक दावत की बात न पहुंचा दी जाए, वहां से निकलने के बारे में ज्यादा फिकर न की जाए।
So don't think too much about leaving until we made an effort to take the message to every single local person.
एक मर्तबा आमतौर पर मुलाकात के लिए जाते हैं वो होता ही नहीं घर में।
He said, most of the time we go first time, the person is not at home.
और हम ये समझ रहे हैं कि काम हो गया।
He said, we think we've done our job.
उससे मुलाकात होना है।
He said, we actually have to meet him.
तो जब मिलेगा जब जाना है।
So we have to find out when he's available, then go to his house.
जहाँ मिलेगा वहाँ जाना है।
We have to find out where he's available, go visit him there.
हाँ, जगह के इत्तेबार से कुछ नज़ाकतें ज़रूर होती हैं।
Of course, we have to be careful about certain places.
वरना अपने मुल्कों में तो हम देखते ही हैं कि वो घर पे नहीं है तो खेत पे पहुँच जाते हैं।
He says back in our own home countries, we go see at home. If he's not there, then we show up.
वो हल चला रहा है, उसे कहते हैं जमात आइए इधर।
He said he's behind his work in agriculture work and tell him stop plowing, give him the jamaat.
वहाँ के लोग इतने मोहब्बत वाले होते हैं कि वो बैल को रोक के आ जाता है।
He said over there they're so loving, caring. They'll stop the ox and come join and listen.
वो पूरी बात खड़े-खड़े सुनता है अच्छा आराम से।
And he'll stand and listen to the entire thing.
और शाम में थक-थका के मस्जिद भी आ जाता है।
And then after such a long, tiring day, he comes to the masjid.
और हिम्मत से पूरी बात सुनता है।
And he listens to the whole bayan.
तो ये है कि हम यहाँ पर भी यही कोशिश करें कि जितने साथी इलाके में हैं, क्योंकि जॉबों के टाइमिंग अलग-अलग है, हमारी गश्त के वक्त अलग होते हैं, बार बार दबा साथियों से मुलाकात नहीं हो पाती। ये कह रहे हमारे बड़े कि जब तक जिम्मेदारों से, जब तक वहाँ के तमाम मुसलमानों से मुलाकात न हो जाए, वहाँ से जाने की जल्दी न करें।
He says that's what others are saying. Make it, people are available at different times of the day. They have different jobs, different shifts. So until we don't meet everyone, we should not try to think of leaving.
काम होना मकसूद है मेरे दोस्त।
Purpose is to get the work done, to get the मुलाकात done.
और फिर उनको लेके हमारे मस्जिद के आबादी वाली मेहनत उनको लेके करना है।
Then the local effort, we need to do it using the local brothers.
एक बात ये कही जा रही है कि अपने आप को भी ज्यादा से ज्यादा इबादत में रखना है।
And he said another thing that's been mentioned that we have to keep ourselves busy in more and more ibadah.
और पूरे साथियों को पूरे काम लगाने हैं।
And then all the brothers should be doing all the different aspects of the effort.
हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह के मनफूदात में ये है कि जमात के हर साथी को हर काम लगाया जाए।
हमारी
कमजोरी है कि हम एक आदमी को पूरे 40 दिन में अच्छा कुक बना के लेके आते हैं कि यही पकाता अच्छा था।
He said our weakness is that we take one person who knows how to cook and make him the cook for all 40 days.
और एक साथी को खूब अच्छा बयान करने वाला बना के लाते हैं।
And one person who knows how to give bayan, and every single he is this bayan.
ना तो यहाँ पे बयान सिखाना है मकसूद।
He said in the effort of deen here, the purpose.
ना किसी को पकाना सिखाना मकसूद है।
The purpose is not to learn how to cook, nor learn how to give bayan.
हर साथी को पकाना है।
Everyone has to cook.
हर साथी को बयान करना है।
Everyone has to give bayan.
हर साथी को तालीम करना है।
And everyone has to do तालीम.
40 दिन तक 40 आमाल होना है हर एक के।
40 days, 40.
ये मतलब नहीं है कि हर एक को हर दिन सबको पकवाना है, मतलब पूरे अमाल में सब लगना है।
He says everyone needs to be involved in different amal for 40 days continuously.
अलबत्ता बाद अमाल 40 दिन तक 40 मर्तबा होंगे हर साथी के।
He said some amal are such that for 40 days all brothers will do in continuously.
जैसे ये बात कही जा रही है कि हम इबादत की दावत देने जा रहे हैं।
Just like we're giving the दावत towards ibadah.
कि हर मुसलमान इबादत करने वाला हो जाए, नमाज पढ़ने वाला हो जाए, तो इसलिए जमात के हर साथी को तहज्जुद की, इशराक की, चाश्त की आदत होना है.
That's why every member of the Jamaat, every single day has to be an abid, has to become punctual under tahajjud, under salat al-duha, awabin, etc., nawafil.
Balki ye bhi kaha ja raha hai ki agar masjid ke saathiyon mein awabin ki aadat hai to awabin padhne ke baad bayan kiya jaye.
He said to this extent that it will be told that if in a certain masjid the local brothers have a habit of performing salat al-awabin after maghrib, then the bayan should start only after awabin.
Aur jamaat bhi awabin padegi.
And then the entire jamaat should also perform awabin.
Lekin agar koi aisi jagah hai ki jahan par isme mashghooliyat ki wajah se पूरे साथी चले जाने का है तो फिर मुअख्खर भी कर सकते हैं.
He said, but if there's a place that if we start, if we delay the bayan for so long after maghrib that people will leave, then in that case we should delay the awabin and perform the, give the talk and then pray awabin afterwards.
इसलिए फर्ज नमाजों के बाद जमात पढ़ने के साथ साथ तहज्जुद का इत्तेमाम जमात में हो.
That's why besides performing fard salah with jamaat in our khuruj, we have to be punctual in our saathis to be performing nawafil daily.
सुबह में मशवरे के बाद 6 नंबर के 6 सिफात के मुजाकरे के बाद इशराक के बराबर आदत हो.
He said everyone should have a habit of performing salat al-ishraq after the morning 6 sifat and mashura.
Then 10 baje taleem hoti hai to usse pehle sabko namaz ki tarbiyat di jaye taaki sabki charge ho jaye.
So before taleem everyone should be encouraged to perform the salat al-duha.
Huzur Pak sahab salam charge kabhi nahi chhodte the.
The Prophet sallallahu alaihi wasallam would not leave the salah, salat al-duha.
Ajeeb baat ye hai ki fateh makkah ke din bhi nahi chhodi aapne.
It's so interesting that in ajeeb that on the day of the conquest of makkah on such a busy day Rasul sallam did not leave the salah.
आपने सलात उद्दुहा पढ़ी बराबर.
He performed salat udhuha even on that day.
ये कहा जा रहा है कि इबादत में हमारे साथी सब लगे.
That is being told that ibadah should be something that we're all be involved.
जिस की दावत देने जा रहे हैं वो हम ही नहीं करेंगे तो हमारी दावत में जान कहां से आएगी.
If we are inviting towards those things which we ourselves are not doing, then they will be, our da'wah will be weak.
तो इस वजह से वहां सबसे पहले पहुंचकर नुसरत का मशवरा होना है.
That's why the first mashura should be done about the mashura of nusra.
Aur bhi jo dusre umur hote hain ki bhai khidmat kon karega, dusre baaki umur kon karenge, daro ki baat hai, fazail e gasht hai, adab e gasht hai, aur uske sath sath bhi daawat wali baat hai, aur rozana ho daawat wali baat, rozana ho iman ke muzakare.
He said then the rest of the umur will be decided, who do khidmat, who do the effort, who do the etiquette of jola, etc. And the daily talk in the night, the imani muzakara, the effort of dawah should be explained every single day.
बाद मर्तबा ये होता है कि अरे यार बात रोजाना 6 नंबर का बयान मत करो, लोगों को पसंद नहीं आ रहा.
Some people say don't give 6 sifat every single day, people are getting tired of it.
वैसी बात नहीं, हमको दावत की बात, ईमान की बात रोज करनी है.
He said this is incorrect, we have to do the speak about the effort of dawah and the 6 sifat on a daily basis.
तो जो उम्र हमारे लिए मशवरे के हमारे बड़े बताते हैं मुजाकरे में और तफसीलात आ जाएंगे, वो मेरे दोस्तों जमात में जाने वाले साथियों को अंजाम देना है.
He said that when the mudakara will be done by the elders about what to, how to do it, that those things need to be punctual and ensure that we do it regularly in our khuruj.
Hazrat Maulana Yusuf sir rahmatullah alayh ke marfuzat mein ye hai ki jamaat mein jane wale har saathi ko itni koshish karke tarbiyat kar di jaye ki wo jamaat leke chalne ke qabil ho jaye.
He says been mentioned in the statements of our Yusuf rahmatullah alayh that every single member of the jamaat should, such tarbiyah should be made at the end of the khuruj that they are capable of taking their own jamaat themselves.
Wo khutba de sakta, wo khutbe ki zarurat pad jaye. अब ये आजकल जो बात कही जा रही है वो ये है कि अगर नमाज पढ़ाने की जरूरत पड़ जाए तो नमाज पढ़ाने के काबिल हो, खुतबा देने की जरूरत पड़ जाए तो अपने वापस आने के बाद की बात है ये, अगर खुतबा जुमा देने की जरूरत पड़ जाए तो खुतबा देने के काबिल हो, नमाज जनाजा की जरूरत पड़ जाए तो नमाज जनाजा पढ़ाने के काबिल हो.
He says we've been told that by the end of the khuruj if this person comes back to a locality where there's a need to lead salah or to even give khutbah or to perform salat janaza, every member of the jamaat should be capable of doing.
Har saathi pe mehnat hona hai.
This effort needs to be done on every single member of the jamaat.
Aur ye mere dosto wo hoga jab hoga jab har saathi apne upar mehnat karne ke liye bhi taiyar ho.
Is that is going to happen when each one of us is going out is willing to make an effort upon our own self.
Aur jamaat jo hai apne saathiyon ko sab aham samjhe ki ye Allah ke raste mein nikle hue hain seekhne ke liye, lihaza ye sabse behtareen opportunity.
So the, and all of us should be thinking that we are all out in the path of Allah, what better opportunity than this to actually learn.
और अपने अखलाक की मशक करना है इनके साथ.
And then we have to
अखलाक सीखना है.
We have to practice on improving our character.
अगर हम जमात में निकलने वाले साथियों के साथ अखलाक से नहीं पेश आए तो दूसरी उम्मत के साथ कहां से पेश आए.
If we do not have good akhlaq with those who are in the path of Allah, how will we have good akhlaq with the ones who are meeting?
तो सब करेंगे वही मेरे दोस्तों
इंशाल्लाह.
अल्लाह के रास्ते में खूब निकलेंगे इंशाल्लाह.
We will do on the path of Allah inshallah.
अल्लाह पाक कबूल फरमाए.
Amen.